الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہماری روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے آداب مدینہ یا آداب حرمین طیبین. دیکھیے کہ ہر مقام کا ایک ادب احترام ہوتا ہے، سارے مقامات ایک جیسے نہیں ہوتے. بہت سے ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ انسان جب جاتا ہے تو اپنے آپ کو سنبھال کر اور احتیاط کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ جاتا ہے. انہی تمام مقامات میں دو مقام ایسے ہیں جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ مقدس اور ہمارے لیے قابل احترام ہیں، مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاکستانی بھائی بھی نہایت غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے، بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ حاضری دیتے ہیں، اور کہنا یہ چاہیے کہ جو کچھ لے کر جاتے ہیں وہ بھی گوا دیتے ہیں. اس لیے کہ وہ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر قدم قدم پر ادب ہے، احترام ہے، اور اس جگہ کی ہیبت اور جلال اپنے اوپر تاری رکھ کر پھر وہاں پر حاضری دینی چاہیے اور رب سے طلب کرنا چاہیے. سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ جب عمرے کے لیے آدمی جاتا ہے تو بیت اللہ کا طواف کرتا ہے. چند سالوں سے ایک چیز دیکھنے میں یہ آ رہی ہے کہ لوگ جوتی پہن کر یا جوتا پہن کر طواف کر رہے ہیں. غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ ہم اپنے شہروں میں، اپنے ملک میں تو مسجد میں جوتا پہن کر نہیں جاتے. ظاہر ہے جوتے کے نیچے غلاظت لگتی ہے، جوتا ہر جگہ جاتا ہے، اچھی بری جگہ، گندی جگہ، اور وہی جوتا یا وہی چپل پہن کر اگر آپ مسجد میں چلے جائیں تو کتنی غلط بات ہوگی. اور یہاں تو مسجد کا یہ تو حرم ہے جو سب سے زیادہ بابرکت اور سب سے زیادہ قابل احترام جگہ ہے. دیگر قوموں کا، دیگر لوگوں کی تو بات الگ ہے. اپنے پاکستانی بھائی مسلمان، جن کو ہم کہتے ہیں اور مسلمان ہیں بھی، جب وہ اس قسم کی حرکت کرتے ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے. جو چپل پہن کر آپ حرم کے باہر گھوم رہے ہیں، وہی چپل پہن کر آپ مطاف میں طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا، اور وہی پہن کر صفا و مروہ کی سعی کر رہے ہیں. اگر کچھ لوگ اس بات سے بے خبر ہیں تو ہم انہیں متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ سخت غلطی پر ہیں اور بے ادبی اور گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہیں. انہیں چاہیے کہ خود بھی رکیں اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی اس چیز سے روکیں. وہ مقدس جگہ ہے، وہ قابل احترام جگہ ہے، وہاں پر تو بے وضو جانا بھی بے ادبی ہے. اور چلے جائے کہ ہم اپنی گندی چپلیں لے کر ہم اس کے ساتھ طواف کریں، تو اس کے لیے سخت ترین اقدام کرنا چاہیے. ظاہر ہے ان کی حکومت کو یا ان کی جو سیکورٹی ہے، جو سپاہی ہیں، شرطیں ہیں، ان کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے طور پر جہاں جہاں تک ہمارا حلقہ احباب ہے اور جہاں تک ہم اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، ہم ان کو یہ بتائیں کہ حرم میں ہرگز ہرگز اپنا جوتا یا اپنی چپل لے کر نہ جائیں، پہن کر نہ جائیں. ویسے تو آپ ایک شاپر رکھیں، اس میں رکھ کر، یا بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ کچھ اس قسم کے بیگ ہوتے ہیں کہ وہ چپل اس میں کر کے اپنی کمر پہ وہ لگا لیتے ہیں، اس کو پہن لیتے ہیں، وہ بھی ایک بات الگ ہے. کوئی ہاتھ میں لٹکا لیتا ہے، وہ بھی بات الگ ہے. لیکن چپل یا جوتا پہن کر طواف کرنا، بیت اللہ کے قریب جانا، اس مقدس جگہ پہن کر گھومنا، یہ سخت جو ہے بے ادبی ہے، اور ہمارے نزدیک تو سخت یہ گستاخی ہے. اس سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کو، ان کو بھی سمجھائیں کہ ہرگز ایسا نہ کریں. دوسری چیز، موبائل کا استعمال. یہ اتنی کثرت کے ساتھ ہو گیا ہے کہ ہم گزشتہ نشستوں میں بھی اس بات پر تمام کو متنبہ کر چکے ہیں اور دوبارہ کرنا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے اپنی عبادت کو، اپنی نیکی کو، اپنے خشوع اور خضوع کو ضائع نہ کریں. ऐसा महसूस होता है कि हम वहाँ इसीलिए जा रहे हैं कि हम अपनी तस्वीरें खींचें और अपने पाकिस्तान या हिंदुस्तान हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ भेजें कि देखो भैया हम हरम के पास खड़े हैं। कोई बैतुल्लाह के करीब खड़े होकर सेल्फी ले रहा है, कोई अपनी बीवी के साथ, कोई अपने बच्चों के साथ, कोई पूरी फैमिली को लेकर। कितने अफसोस की बात, कोई तवाफ करते में फोन पर बात कर रहा है, दो चक्कर हो गए, तीन रह गए, तीन हो गए, दो रह गए, पांच रह गए। आप वो मकाम ऐसा है कि वहां पर नीची निगाह से अपने गुनाहों पर नजर करते हुए अल्लाह की हैबत और जलाल अपने ऊपर तारी करते हुए सिर्फ और सिर्फ नीची निगाह से आप तवाफ करते रहे, बस तब आपके अंदर खुशू और खुजू पैदा होगा और गुनाहों की माफी का जज्बा पैदा होगा, नेकियां करने का जज्बा पैदा होगा। अब हमारा ध्यान तो है मोबाइल की तरफ, तो हम तवाफ के चक्करों में कौन सी दुआ पढ़ रहे हैं? कोई दुआ नहीं पढ़ रहे। कितने लोगों को देखा कि पूरे चक्कर में जो है वो सिर्फ फोन पर ही बात कर रहे हैं। खुदा के लिए इस मोबाइल को छोड़ दीजिए, हरम से बाहर ही रखिए, और अगर लेकर जाएं तो उसको बिल्कुल साइलेंट करके जाएं। जब आप तवाफ मुकम्मल कर लें, अगर आपको यह अंदेशा है कि इसके जरिए आप किसी तक पहुंच सकते हैं या अपने किसी को अपने तक बुला सकते हैं मोबाइल के जरिए, तो उसको साइलेंट करके रखें। जिस वक्त बात करनी हो उस वक्त आप उसको खोलें। तवाफ के दौरान घंटियां बोल रही हैं, दूसरे का खुशू खुजू आप ख़राब कर रहे हैं, खुद बात कर रहे हैं, अपना तवाफ भी ख़राब कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, अपनी इबादत भी ज़ाया कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये गलत हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इबादत कबूल हो, अगर हम चाहते हैं कि बाअदब हाजिरी हो, तो खुदा के लिए इन तमाम चीज़ों को तर्क कर दीजिए। तब इबादत की असल रूह, असल खुशू और खुजू और असल मकबूलियत आपकी इबादत को हासिल होगी। ये तमाम चीज़ें आप तर्क कर दें। और यही चीज़ सफा और मरवा पर भी, लोग जूतियाँ पहनकर चल रहे हैं, एक दूसरे को धक्का भी दे रहे हैं, और सफा और मरवा की सही के दौरान बातें भी हो रही हैं, गुफ्तगू भी हो रही, तवाफ के दौरान भी एक दूसरे से बातें हो रही हैं, अगर मोबाइल है तो मोबाइल पे बातें हो रही। हम किस तरफ जा रहे हैं? हम इतना पैसा खर्च करके क्यों गए वहाँ पर? ये मोबाइल पर बातें पाकिस्तान में क्या नहीं हो सकती थी? अपने दोस्तों से गुफ्तगू पाकिस्तान में नहीं हो सकती थी? या आप जहाँ होटल में ठहरे हैं वहाँ आप नहीं कर सकते? ज़रूरी है कि हरम में जाकर ही आप बैतुल्लाह के सामने बैठकर गुफ्तगू करें, या बैतुल्लाह के पास जाकर आप सेल्फी लें? और आप गौर करें कि जब आप सेल्फी लेंगे तो आपकी पीठ होगी बैतुल्लाह की तरफ, ये भी बेअदबी है, ये भी गुस्ताखी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अपने जहन में रखें, अपने हज और अपने उम्रे को, अपने तवाफ को, अपनी सही को बर्बाद ना करें। जब इतना पैसा खर्च करके गए हैं तो जो अजर व सवाब हासिल करने के लिए गए हैं उसको हासिल करें। अब यहाँ से चलकर दूसरा मकाम है सरकार की बारगाह में हाजिरी, मदीना मुनव्वरा, वो मुकद्दस मकाम जहाँ पर रोज़ाना 70,000 फरिश्ते रहमतें लेकर नाजिल हो रहे हैं, 70,000। और हदीस शरीफ के मुताबिक जो आज नाजिल हुए हैं कयामत तक उनकी बारी नहीं आएगी, दूसरे दिन अल्लाह ताला फिर 70,000 पैदा कर देगा। कितना बड़ा मकाम है, कितना बड़ा मर्तबा है उस जगह का। और वो मकाम जिसके मुताल्लिक़ कहा, नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बा यजीद ईजा, कि जुनैदो बा यजीद यहाँ पर अपना सांस रोक कर हाजिरी देते थे कि यहाँ सांस लेना भी बेअदबी है और गुस्ताखी। और हम क्या कर रहे हैं? हम रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी के दौरान हम जालियों की तरफ पीट करके सेल्फी ले रहे हैं। और दूसरी एक नहायत ख़तरनाक बात जो इंसान की कम अकली और उसकी जहालत और उसकी गफलत की बयन दलील है, अब उसको क्या कहा जाए? जूतियां हाथ में लेकर गए, एक हाथ में जूतियां हैं, दूसरा हाथ खाली है, और जब सरकार के रोज़े के पास से गुजर रहे हैं तो दोनों हाथ ऊपर करके सलामी दे रहे हैं। आप ज़रा सा गौर करें कि हाथ में जूतियां और फिर आप उठा रहे हैं, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, कि आप जूतियां वहां दिखा रहे हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह। जूतियां या तो डिब्बे में रखकर जाएं या अपने शॉपर में रखकर पीछे लटका लें या हाथ नीचे कर लें, लेकिन हाथ में लेकर और फिर इस तरह करना, ये तो अपने आमाल को ज़ाया करना। कुरान कहता है, अंताहबत आमालुकुम वअंतुम ला तशुरून, सिर्फ आवाज़ बुलंद करने पर आमाल ज़ाया हो जाते हैं तो फिर दीगर चीज़ों पर कैसे ना हो? सिर्फ आवाज़ बुलंद करने पर, ला तरफ़ो अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, वला तजहरु लहु बिल्कौल कजार बादिकुम लिबादिन अंतहबता मालुकुम व अंतुम ला तशुरून। कैसे बात ना करो जैसे तुम आपस में करते हो, और अगर ऐसे करोगे तो आमालों का सरमाया बर्बाद हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो जहां सिर्फ आवाज बुलंद करना आमाल के जाया होने की दलील, तो वहां इस किस्म की हरकतें करना तो आमाल कैसे बाकी रहे। वहां भी जब हाजिर हों मोबाइल को बंद कर दें, साइलेंट कर दें, या होटल में छोड़ कर जाएं, अपनी जूतियां हमेशा नीचे रखें, चॉपर में रखें, कभी भी ऐसा ना हो कि हाथ में हो और फिर आप सलामी पेश कर रहे हो। हाथ बांध कर नीची निगाह से वहाँ से गुजरे, अस्सलातु वस्सलामु अलैक या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैक या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैक या नूर मिन नूरिल्लाह, जो भी आपके दिल में आए सलातु सलाम पेश करते हुए गुजर जाइए। वहाँ पर एक दूसरे को धक्के देना, एक दूसरे की सेल्फी लेना, या खुद अपना फ़ोटो खिंचवाना, दूसरे को मोबाइल दे दिया मैं गुजर रहा हूँ मेरा फ़ोटो खींच, अब हाथ बन के गुजर रहे हैं उधर इशारा भी कर रहे हैं कि हाँ भाई खींच लिया नहीं खींच लिया, तो आपका ध्यान इधर है या उधर है। तो सरकार तो जानते हैं कि ध्यान किधर है। एक वो है जो बिल्कुल नीची निगाह से रोते हुए वहाँ से गुजर रहा है सलात व सलाम पेश कर रहा है बाअदब तरीके से, और एक वो है जो गुजर रहा है दुआ भी कर रहा है और उधर इशारा भी कर रहा है कि मेरी फ़ोटो बनाओ मेरी मूवी बनाओ। ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये तो फिर दिखावा हो गया, ये रियाकारी है, ये अपने अमल को ज़ाया करना है। गोया हम इतना पैसा खर्च करके जब जा रहे हैं तो अपने अमल को बर्बाद करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हाजिरी कबूल हो जाए तो आप ये तमाम चीज़ें तर्क कर दें। बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब, जो जितना अदब करेगा उतना ही उसको फैजान मिलेगा, उतना ही उसको इरफान मिलेगा और उतनी रहमतें बरकतें वो लेकर आएगा। अच्छा, हाजिरी देकर जब हम बाबे बकी से बाहर निकलते हैं तो हम अहले सुन्नत का तरीका तो ये कि हम हाथ बांध के उल्टे निकलते हैं, यानी पीठ भी ना हो सरकार के रोज़े मुबारक की तरफ, जहाँ तक नज़र आ रहा है, फिर जब आप मुड़ जाएं तो फिर आप चले। अक्सर लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं हाथ में चप्पल होती है ज़ोर से चप्पल ज़मीन पर फेंकते हैं, जिससे आवाज़ भी पैदा होती, चमड़े का जूता है या चप्पल है या रबड़ की जो भी है, जब आप ज़ोर से फेंकेंगे आवाज़ पैदा होगी। ये भी बेअदबी है, ये भी गुस्ताखी, इस तरह भी ना करें, बल्कि वहाँ से दूर जहाँ तक आप जा सकें वहाँ जाएँ और फिर वहाँ जाकर आप चप्पल पहनें। ये तमाम चीज़ें वो हैं कि जो इंसान के आमाल को ज़ाया कर देती हैं। तो एक एक चीज़ को अपने जहन के अंदर रखें। बाद हजरात को देखा कि मस्जिद नबवी में या हरम में यानी बैतुल्लाह में कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, करते करते थक गए, कुरान उठा के एक तरफ रख दिया और बैतुल्लाह की तरफ पैर करके लेट गए। इसी तरह वहाँ पर मस्जिद नबवी में सरकार के रोज़े मुबारक की तरफ पैर करके लेट गए, या बैतुल्लाह की तरफ क़िबले की जानिब पैर करके लेट गए, ख्याल ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। और जब उनको इस बात पर तवज्जो दिलाई गई तो अक्सर लोग जो थे वो तो मान गए, और अक्सर ऐसे भी होते हैं जिनके जो मानते ही नहीं। लेकिन बहरहाल हमें ये चाहिए कि हम कम से कम अपने आप पर तो ये चीज़ लाजिम कर ले कि हम कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे। और जो जो आपका हल्का अहबाब है, जहाँ तक आप इस बात को पहुँचा सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला अगर आपके कहने से किसी ने अमल कर लिया तो आपको अजर व सवाब ज़रूर मिलेगा, इसलिए कि आपने एक बेअदब को बाअदब बना दिया। हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रफ़ा हाजत के लिए मदीने से दूर निकल जाते थे, जितना दूर जा सकते थे वहाँ जाकर फिर फारिग होते और फिर वापस तशरीफ़ लाते, ये अदब था उनका। तो बुज़ुर्गान दीन ने, औलिया कामिलीन ने, आइमा मुज्तहिदीन ने कितना अदब किया है बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हुजूर के शहर का अदब, हुजूर के उन मुक़द्दस गलियों का अदब, उस मकाम का अदब। और आज हम क्या कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, सेल्फियाँ ले रहे हैं, फजूल बातें कर रहे हैं। जब हरम में दाखिल हो जाएं बैतुल्लाह में, या इधर हरम में दाखिल हो जाएं मस्जिद नबवी में, तो आपस में कोई भी फजूल बात, दुनियावी बात ना करें, कोशिश करें कि वहाँ पर अस्तगफार का विर्द करें और मदीने तैयबा में दुरूद पाक का विर्द करें। जितनी कसरत के साथ आप दुरूद पढ़ेंगे सरकार की निगाह करम उतनी ही आपकी जानिब होगी, और वहाँ जितनी कसरत से अस्तगफार पढ़ेंगे, हदीस शरीफ के मुताबिक अस्तगफार तुम्हारे दिलों की पॉलिश है, जितनी कसरत से पढ़ोगे दिल उतना ही पाक और साफ हो जाएगा और रोशन और मुनव्वर हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें इसलिए बयान की कि अभी इसी महीने ये फ़कीर वहाँ पर हाजिर हुआ और ये चीज़ें देखीं तो दिल में शदीद तकलीफ़ हुई और ये महसूस हुआ कि इसको बयान करना चाहिए ताकि जहाँ तक हो सके हमारे मुसलमान भाई इस गलती से अपने आप को बचाएं। हो सकता है कि कोई लाइल्मी में कर रहा हो और अगर कोई इल्म होने के बाद कर रहा है तो उसके लिए तो सज़ा और ज़्यादा है। बहरहाल हम पर ये लाजिम है कि हम खुद भी बचें और उन लोगों को भी बचाएं और जहाँ जहाँ हमारा हल्का अहबाब है, हमारे दोस्त हैं, हमारे अजीज़ रिश्तेदार हैं, हमारी फैमिली के अफराद हैं, उन सब को इस चीज़ की पाबंदी करवाएं कि कभी भी ऐसी हरकत ना करें दोनों मकामात पर, कि दोनों मकामात पर आमाल के ज़ाया होने का अंदेशा है। और एक आखिरी बात यह है कि देखिए इंसानी जहन एक ही जानिब लग सकता है। अगर आप बैतुल्लाह में फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो आपके ध्यान इबादत की तरफ नहीं है, मोबाइल की तरफ। अगर आप मवाज़े शरीफ में फ़ोन पर बात करते हुए गुजर रहे हैं तो आप सरकार को सलाम पेश कर रहे हैं या आप मोबाइल पर बातें कर रहे हैं, फिर कैसे ये हाज़िरी हुई? हाज़िरी होनी चाहिए खुशू खुजू के साथ, हाज़िरी होनी चाहिए अदब के साथ, हाज़िरी होनी चाहिए एहतराम के साथ, हाज़िरी होनी चाहिए अपने आप पर सरकार का रौब तारी करते हुए कि हम इस काबिल नहीं थे कि इस मकाम पर पहुँचते, अल्लाह के हबीब ने निगाह करम की तो हम पहुँच गए। इस तरह करके वहाँ से आज दिन के सारे के साथ गुजर जाइए, एक निगाह करम हो जाएगी, दुनिया और आखिरत संवर जाएंगे। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। तो इतना बड़ा नसीब अल्लाह ने आपका किया कि उस मकाम की हाज़िरी आपको अता की और फिर वहाँ हाज़िरियों का अगर हम ऐसा काम करें तो फिर हमसे ज़्यादा बदनसीब और कौन हो सकता। इसलिए मेरे बुज़ुर्ग और दोस्तों, इस गुफ्तगू का हासिल यही है कि बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब, दोनों मकामात पर हमेशा अदब को मलहूज रखिए, कभी भी बे अदबी गुस्ताखी को अपने करीब आने न दें और अगर कोई ऐसा हो तो उसको समझाने की कोशिश करें और कोई ऐसा है कि जो नहीं समझ पाता तो आप उससे बचकर आप वहाँ से गुजर जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को हरमैन तय्यबैन की बार बार और बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन बिजाह सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।